परम पूज्य प्रेमपुर जी महाराज, परम पूज्य ब्रह्मलीन संत अखंडानंद जी महाराज, यहां पधारे हुए संतगण, श्रोतागण, सभी को वंदन करते हुए आज के आराधन के पुनीत अवसर पर आप सभी का भावपूर्वक स्वागत करते हैं। जीवन में गुरु के पास जावे तो कुछ यह भाव लेके जाए, कुछ अर्पण करेंगे, पर जब यह भाव आए कि हमें स्व को समर्पण करना है तो जीवन की राह बदल जाती है। आज जिनके आराधन महोत्सव पर हम यहां आए हैं, उसी के साथ साथ आज जेबी नगर में प्रेमपुर जी महाराज के निर्वाण महोत्सव को मनाया जा रहा है। यह एक घटना है कि दोनों संत जो विश्व में शायद ही आखिरी जो हम लोग शताब्दी में गिने तो ऐसे संत यहां पृथ्वी पर अवतरित हो, ऐसे दो संत, एक का निर्वाण महोत्सव और एक का आराधन महोत्सव एक ही वक्त मनाया जा रहा है। ईश्वर की बड़ी कृपा है। आज खुशी यह है कि आज का जो अध्यक्ष स्थान लेंगे परम पूज्य अद्वैतानंद गिरि जी महाराज महामंडलेश्वर, आप और प्रेमपुरी एक ही रीत से जुड़े हुए हैं सालों से, और जब भी आप पधारते हैं तो स्वाध्याय और प्रवचन में और अन्य जो भी यहां प्रवृत्तियां चलती है उसमें जागृति आ जाती है ऐसे संत की अध्यक्षता में। और विशेष रूप से परसों ही रात को हमारी बात हुई, यहां जो विराजमान है और जिसको हम निर्वाण महोत्सव जो ये 57वां प्रेमपुर जी महाराज का हम लोग 30 तारीख से मनाने जा रहे हैं, उसमें व्यासपीठ पर जो विराजमान होंगे ऐसे परम पूज्य परम संत वंदनीय पूर्ण चैतन्य जी महाराज, आपका हम हृदयपूर्वक यहां स्वागत करते हैं। आप यहां कुछ दिन के लिए बीच में आए थे तो मैंने बोला थोड़ा परिचय प्रेमपुरी जी आश्रम को पहले ही से हो, क्योंकि तैयारी हमें प्रेमपुरी भागवत की जब भी होती है तो बड़ी जोर शोर से होती है, तो अगर आपके दर्शन और आशीर्वचन का इस पुनीत अवसर पर लाभ मिलेगा तो उसमें सोने में सुगंध जैसी बात होगी। और विनयपूर्वक, उनकी बड़ी व्यस्तता होती और कई अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, पूरा दिवस उन्होंने बोला यहां से वहां कोई न कोई संत मिल जाए तो वहां पे बिठा के वो प्रवचन करे, तो यहां बड़े भाव से बधा रहे हैं। और बाकी जो संत है उनके तो हम परिचित है ही है, बाकी जो भी आने के परिचय है या संचालन है वो हमारे सुंदर जी करेंगे, जिनका परिचय शायद प्रेमपुरी को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अखंडानंद जी महाराज के ही प्रसादी रूप यह हमारे सुंदर जी यहां पधारते हैं तो एक चेतना यहां आ जाती है, तो वहां भी से संचालन करके उसके पूर्व विश्वनाथ जी शास्त्री यहां जो भी अर्चना विधि होगी वह करेंगे, बाद में तिजोरीवाला जी मधुसूदन जी वह यहां जो बड़े समीप है अखंडानंद जी महाराज के समीप थे वह कुछ बोलेंगे, और तत्पश्चात झुंझुनवाला जी भी कुछ दो शब्द बोलेंगे। सबसे पूर्व मैं यहां के ट्रस्टीगण सूर्यवाला जी ललित जी सबको बताऊंगा कि आप पधारे और सबके हम लोग माल्यार्पण करेंगे। बड़ी शांति से यह कार्यक्रम को हम, जिसके प्रेमपुरी महाराज की जो भी हमेशा शिस्त रहा है आश्रम का, उसी रीत से हम लोग 9:30 तक यह कार्यक्रम चलेगा।
भद्रंकारणे शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविरजजतराः स्थिरैरंगैस्तुष्टो वाग्सनु विर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। बोलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जय। मेरे दो शब्द बोल लेते, वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगत पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। मञ्चस्य उपस्थित परमपूज्य अध्यक्ष स्वामी श्री अद्वैतानंद जी महाराज, क्षमस्व अद्वैतानंद जी महाराज, परम पूज्य पूर्ण चैतन्य जी महाराज, स्वामी श्री प्रीतमानंद जी महाराज, स्वामी श्री सर्वेश चैतन्य जी महाराज, नमो नमः। सभी ट्रस्टीगण, हमारे सभी भक्तजन, मैं सिर्फ आराधन ये शब्द है उस पर दो शब्द बोल करके विराम लेता हूं। हमारे यहां पूजा पद्धतियां हैं और अनेक देवी देवताओं की भारतीय संस्कृति के अनुसार पूजा होती है। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, अभी श्रीमद् भागवत आएगा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। ये हमारी परंपरा रही है या हमारी संस्कृति है। अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हुए भी ये शब्द ऐसा है कि कहीं कुटुंब में, विशेष रूप में सभी देवी देवताओं को मानते हुए भी, बहुत से कुटुंब में जैसे गणेश जी की पूजा विशेष रूप में होती है, कहां देवी की पूजा विशेष होती है, शिव की पूजा विशेष होती है, उनकी अपनी अपनी परंपराएं। हमारे यहां पूजा करने के प्रारंभ में ऐसा बोला जाता है इष्ट देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, ग्राम देवता भ्यो नमः। तो ये हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ है। तो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हुए भी हर कोई कुटुंब में या परंपरा में या वंश में किसी एक विशेष देव की, ये उनकी अपनी कुटुंब की परंपरा है कि उसके कुल देवता। वैसे ही मैं ऐसा मानता हूं कि स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज का ये मंदिर है और उसको उत्थान, उसको सर्वोपरि लाने में पत्र पुष्प सुगंधित करने वाले स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज थे। तो हमारे इस स्थान के और हमारे सबके, भले ही हम इस सभी को मानते हैं, सभी की पूजा करते हैं, लेकिन इस स्थान के हमारे आराध्य देव कौन है? स्वामी श्री अखंडानंद जी। तो जो आराध्य देव हैं, उनकी आज पूजा का दिवस है, आराधन दिवस। तो पूजा तो हर रोज करनी चाहिए, केवल एक दिन का सवाल नहीं है, लेकिन आराधन दिवस मतलब विशेष उत्सव का आज का दिन है। महाराज जी का प्रवचनात्मक संग्रह भी यहां पे है, प्रातः हम सुनते हैं। सत साहित्य प्रकाशन की ओर से भी प्रत्येक समय कुछ न कुछ प्रकाशन होता है और खास तौर पे हमारे संत वृंद यहां पे महाराज जी की कृपा से ही सब आपको मधुरवाणी सुनाते हैं। तो इसी माध्यम से आज का उत्सव है, उसका नाम रखा गया है आराधन दिवस, और आगे का क्रम है उसके अनुसार संत की वाणी ही उत्तम है। ओम तत्सत।
नारायण नारायण नारायण। अभी मधुसूदन भाई तिजोरी वाला जी से हम प्रार्थना करते हैं। डालमिया जी कहले आएंगे, डालमिया जी है नहीं, तो तिजोरी वाले जी से अनुरोध है कि वो अपना स्वागत कर लें।
स्वामी अखंडानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, सभी संतों के चरणों में प्रणाम, सोमदत्त जी, विश्वनाथ जी को प्रणाम, आप सब संतियों के भी मेरा प्रणाम। आज से 27 दिन वर्ष पूर्व आज का ये दिन था, यहां बावरा जी का प्रवचन शुरू होने वाला था। तब खबर आई कि स्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है। अब यहां प्रवचन पूरा होते मैं गया घर पे, दिल्ली के प्लेन की सर्विस की टिकट कर लिखवा ली और एयरपोर्ट पे पहुंच गया। अब वहां भी देखिए कैसा अच्छा सुलभ समाचार मिला कि गणेशानंद जी महाराज और जगदीशपुरी जी महाराज भी साथ ही साथ प्लेन में दिल्ली तक आए और वहां से हम लोग वृंदावन आए। अब जब वृंदावन में आए तब महाराज जी को नृत्य गोपाल मंदिर में बिठाया गया था और वहां महाराज जी को ऐसा बिठाया था कि ऐसा ही हमको तो भास होता था कि महाराज जी अभी अपना प्रवचन शुरू करेंगे, ऐसा महाराज जी की मूर्ति वहां थी। पीछे तो वहां से यमुना जी ले गए और वहां महाराज जी की सब कार्य विधि हो गई। अब पीछे हम लोग घर पे आ गए, बम्बई आ गए, महाराज जी के साथ अपना महाराज जी भी साथ ही थे, जगदीशपुरी जी और गणेशानंद जी महाराज, ये सब साथ साथ हम बम्बई आ गए। अभी महाराज जी की ऐसा समय आया था कि महाराज जी की तबियत, कई सालों की बात मैं करता हूं, आज की बात नहीं करता हूं, बहुत साल हो गया, महाराज जी बीमार थे, अपने महाराज जी की तबियत ठीक नहीं थी। तब वहां स्वामी सीताराम शरण जी महाराज, सीताराम जी शरण जी महाराज भी वहां थे एक समय में, वहां विपुल में भी ब्लॉक था उसमें रहते थे और महाराज जी को रिझाते थे, उसका रामायण से और भजन कीर्तन और वहां की वाणी में भजन कीर्तन करना वगैरह वगैरह चलता था। अब समय आया कि महाराज जी की तबीयत भी अच्छी हो गई और भारतीय विद्या भवन में एक आखिरी दिन का प्रवचन सीताराम शरण जी जो वहां अयोध्या जी के लक्ष्मण किलाधीश थे, वो उसका प्रवचन भी पूरा होने वाला था। तब क्या हुआ कि महाराज जी ने बताया कि अब आप सीताराम शरण जी महाराज तो जाने वाले हैं, तो अब मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास कुछ देने की सुविधा ही नहीं है, चलो मैं स्वामी जी को सीताराम शरण जी भी मैं दे देता हूं, राम भगवान को दे दिया। और पीछे एक समय आया कि मैं अयोध्या जी दस रामनवमी हर रामनवमी पर जा रहा था और वहां से वृंदावन आता था। अभी वृंदावन की बात तो क्या करनी है, वहां सत्संग सिवाय और कुछ बात नहीं थी। महाराज जी सुबह में जो सत्संग शुरू होता था वो रात तक चलता था, वो सत्संग महाराज जी का नृत्य गोपाल मंदिर में होवे, भाव भावेश्वर शंकर भगवान का मंदिर में होवे, राधा कृष्ण का मंदिर में होवे, और महाराज जी तो वृक्ष की छाया में बैठ के भी चलता था। रात को सोते समय तब सत्संग की महिमा, ऐसे महाराज जी ने कहा। और शौनक जी ने भी बताया है कि एक लव क्षण मात्र का भी सत्संग, ये सब साधन तो सब अच्छा ही है, तो श्रेष्ठ साधन वही है। और भगवान कृष्ण ने भी एकादश स्कंध में उद्धव जी को बताया कि भाई श्रवण सबके उत्तम साधन है, ऐसे संत महात्मा के चरणों में हमको बैठने का बहुत ही लाभ मिल गया। महाराज जी अपने ज्ञान की बात करें तो ऐसा लगे कि कोई ज्ञानी ऐसा है ही नहीं, अगर भक्ति की बात करें तो बोले कि ऐसा भक्त कोई नहीं है, और कोई योग की बात करे तो कैसा योगी कोई नहीं है। और महाराज जी तो बताते थे कि हमारा मुख्य विषय दर्शन शास्त्र है, ऐसा महाराज जी बताते थे। और ऐसे संत महात्मा गणेशानंद जी महाराज ने एक दफे पूछा, महाराज जी ज्ञान हो गया, महाराज जी के तीन शब्द का शब्द जवाब दिया है उसने महाराज जी, आवरण हट गया है, ऐसा महाराज जी ने बताया था। तो ऐसा संत चरणों के में बैठने का हमारे को, और 365 दिवस हमारा सत्संग यहां बम्बई में तो होता ही है, तो 365 दिवस महाराज जी की टेप 20 मिनट पहले 7:30 के पहले यहां टेप बजती है, ऐसा लगता है कि महाराज जी हमारे बीच में से तो गए ही नहीं है, ऐसा हमको भान होता था। ऐसा चरणों में बैठने का हमको लाभ मिला है, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। और अभी तो हम हमारा भाषण करने के लिए नहीं आए हैं। मैं तो अभी हमारा समय है कि यहां आने के बदले मेरे को तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और फिर भी मैं आज प्रयत्न करके भी यहां आ गया हूं, और संत संतों को सुनने का ही हमको लाभ मिलेगा।
बहुत सुंदर भाव हमारे तेजुरी वाला जी ने रखे। अभी मधुसूदन भाई जिसे हम अनुरोध करते हैं कि अपने भाव पुष्पांजलि रखें।
नारायण 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 नारायण। आइए हम सब सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, अपनी भावना अपनी श्रद्धा उनके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। अभी हमने हमारे वरिष्ठ ट्रस्टी हमारे श्रद्धेय श्री तिजोरी वाला जी के भावपूर्ण विचार सुने। उनके मन में कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है, कितना विश्वास है, और पिछले 30 सालों से वो यहां पर सत्संग करते आ रहे हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। हम सबका परम सौभाग्य है संतों के दर्शन, संतों की वाणी और संतों को याद करना। आराधना का मतलब क्या है? उनके सद्गुणों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पण करते हैं। सही माने में देखा जाए तो जो हमें संतों से मिलता है, जो हमें स्वामी जी से मिला है, उसका ऋण इस जीवन में हम कभी नहीं उतार सकते। जीना कैसे, जीवन में कैसे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना, ये हमें संत बतलाते हैं। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े सम्राट आए, बड़े बड़े शहंशाह आए, बड़े बड़े सेठ महाराज आए, सब चले गए। हम किसी को याद नहीं करते हैं, किसी का नाम तक हमें याद नहीं है, लेकिन ये संत ये महापुरुष ऐसी छाप छोड़ गए हमारे जीवन में जिनको हम कभी भूल नहीं सकते। हम भूलना चाहें तो भी भुला नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूं, जो हमें इन्होंने जो इन्होंने हमको दिया है उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। आज देखा जाए तो आज की इस पीढ़ी में, आज के इस जमाने में हम भटक सकते हैं, लेकिन जो भाई बहन प्रेमपुरी में आते हैं, संतों से जुड़ जाते हैं, सत्संग करते हैं, उनको जीवन की राय मिलती है, वो सही माने में जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं और अधिक कुछ नहीं कहकर, हमें तो संतों से सुनना है, संतों का मार्गदर्शन लेना है। मैंने शब्दों के साथ आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण।
हमारे जैसा कि गिरीश भाई वेसवाला ने बताया कि हमारे प्रेमपुरी जी महाराज का भी 56वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है और महाराज श्री का 27वां है, तो वृंदावन में भी 13 तारीख से सप्तदिवसीय ये आराधन महोत्सव आयोजित है, और यहां भी उसके उपलक्ष्य में हमारे ब्रह्मचारी श्री प्रीतमानंद जी प्रहलाद चरित सुना रहे थे 7 दिन तक, और आज वहां पे पूर्णावति है, कल भंडारा है वृंदावन में वृहद स्तर पे, और वहां पे वृंदावन के सारे हमारे कैमार वन से महाराज श्री पधारे हैं, तो वृंदावन से सारे जो वहां सत्पुरुष हैं सब लोग जुटते हैं, और 7 दिन तक रोज सवेरे विद्वत गोष्ठी होती है, और सब लोग महाराज जी को याद कर करके खूब खूब रोते हैं। तो अब वहां पे श्रीनाथ शास्त्री जी आए तो उन्होंने कहा कि 27वां वर्ष है, ये तो हमको लगता ही नहीं है कभी हमारा विछोह महाराज श्री से हुआ हो, इस ढंग से उनको संविति नहीं होती, जैसे हमारे तिजोरीवाला जी बोल रहे थे। तो बोले कि 7 और 2 9 होते हैं और 9 पूर्णांक है। तुलसी बाबा की भी बात आई थी तो उसमें उन्होंने भी इसको एक से यही एक ऐसा अंक है जो अंत तक नहीं बदलता है, एक रस। हमारे महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, उनके सामने तो कुछ बोलने का बनता नहीं है, उनसे सबको जैसे अभी बता के गए कि सबका सुनना ही है, तो वो उनकी हम विद्वानों की बात वहां की बता रहे हैं कि वो एक रस रहता है। बोले कैसे रहता है? तो कहे कि 9 का गुणा करो आप, तो 9 एकम 9, 9 दुनी 18, तो 18 का दोनों जोड़ दो, 1 और 8 9, 9 तिया 27, फिर 2 और 7 जोड़ दो 9, ये नौ का पूरा पहाड़ा नौ तक नौ ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। इसको उन्होंने महाराष्ट्र पे घटाया कि एक रस, न सुख न दुख, न गरीब न अमीर, सबके लिए एक रस, समरस। और जिसके सामने पड़ जाए उसको, या जो उनके सामने पड़ जाए उनको लगे कि हमसे ये सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ऐसे महाराष्ट्र का दृष्टि प्राप्त हमारे बीच में स्वामी श्री ब्रह्मचारी श्री प्रीतमानंद जी वृंदावन से पधारे हैं। इन्होंने नौ दिन तक बड़े प्रेम से प्रहलाद चरित आप लोगों को सुनाया, और इनका एक प्रण भी है, और ये बहुत जोर से उस बात को बोलते हैं कि लोग महाराष्ट्र का नाम लेके महाराज जी बन जाते हैं। ये बहुत तेज इस पे दंड रखते हैं कि महाराज जी का लोग नाम लेके महाराज जी बन जाते हैं। तो वो बार बार याद दिलाते हैं कि महाराज जी को महाराज जी ही माने, ऐसा उनका वो रहता है भाव। और जो भाव है वो उनका इतना दृढ़ है, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे सकल एक तुम स्वामी। ये महाराष्ट्र के प्रति इनकी भावना है और उसमें दृढ़ है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि श्री चरणों में कि वो अपने भाव को पाए महाराष्ट्र के।
सिंदुरांगम दरोद्यनु मदनु नयन योगम मूर्ति देव्यानुरागम काश्मीरलेप्तिभालं ललिततुलसिका मोक्तिमानिबालं हरिसोन हरीन्द्रं रघुकुलतिलकं ध्यानीत्मतांच वक्त्रम रोमांच चंचत तनुमरुणिपटुं मारुतिं चिंतेहं वरहापीडं नटवरे बपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रतिभा सकनक कपिसम वैजयंती चमालाम रंध्रानु बेणु रधरि सुधया पूरयन गोपि वृंदै वृंदा रण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दो मिनट भगवान का नाम ले करके चर्चा करेंगे। जय राधे राधे गोविंदो गोविंदो राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे गो, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भगवत स्वरूप पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री महाराज श्री जी के श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज इस सभा के अध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अद्वैतानंद जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। वृंदावन से अपने ही आत्मा स्वरूप पूज्य ब्रह्मचारी श्री पूर्ण चैतन्य जी महाराज उनके श्री चरणारविंदों में प्रणाम। परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञान चैतन्य जी महाराज उनके चरणारविंदों में शास्त्र दंडवत प्रणाम। आप सभी यहां जो विराजमान हैं, आराधना के पक्ष पर बैठ करके सब श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं का ही स्वरूप मान करके आप सबको मेरा प्रणाम। चर्चा सभी लोग बैठ करके सभी श्रवण कर रहे हैं। अस स्वभाव कहूं सुनाहूं न देखूं, रामचरितमानस की यह अर्धाली है। अस स्वभाव, अभी एक शब्द ऐसा इन्होंने भूला, श्री मधुसूदन जी बोल रहे थे, हम लोग बहुत छोटे से थे और उन्होंने बताया कि नित्य गोपाल के प्रांगण में जब वो बैठे थे तो ऐसा लगता है कि जैसे बोल रहे तो मन थोड़ा उधरी में पहुंचा। अस स्वभाव, आप थोड़ा इस शब्द में थोड़ा गहराई पर यदि जाएंगे तो आप सब लोग यहां पर बैठे हैं और महाराज जी से सब मिले हुए हैं, तो ऐसा स्वभाव जो है महाराज जी का, चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई ढाल आत्मा का हो, चाहे जैसा हो, महाराज श्री जी ने अपने हृदय से लगाया है। और किसी से भी आप पूछ लीजिए, हर व्यक्ति यही कहता है कि महाराज जी मुझे बहुत चाहते थे। भगवान और गुरु की जो बात है बस यही है, तो भगवान के ही स्वरूप माने जो भगवान वही महाराज श्री जी है, दूसरा कोई है ही नहीं। आप देखेंगे कि अस स्वभाव कहूं, महाराज ऐसा स्वभाव कहीं देखने को ना मिलेगा और ना मिला है। और यही बात श्रीमद् भागवत के उपाख्यान पर स्मृति जाती है तो वहां भगवान श्री श्याम सुंदर कि वो झांकी का दर्शन है। आप सभी लोग यहां पर सत्संगी है, जरा ध्यान से श्रवण करेंगे। भगवान श्री बालकृष्ण लाल बड़े प्रेम से आनंद से पालने में लेटे हुए हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं, सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, यशोदा मैया इत्यादि सभी बधाई देने में लगी हुई हैं। लेकिन उसी बीच में बकासुर की बहन श्री पूतना पहुंच जाती है और स्तन पर हलाहल विष का लेपन करके पहुंचती है। बाल कृष्ण लाल को आज सारे लोग उठा करके सारी गोपियां ग्वाल बाल ब्रज में महाराज हृदय से लगाती हैं, चूमती हैं कि हमको आनंद देने वाला आज इस ब्रज में है। लेकिन ये आनंद उस पूतना को नहीं देख गया तो पूतना वहां पर जब पहुंची बालकृष्ण लाल को अपनी गोद में लिया और अपने ही स्तन का पान कराया तो अस स्वभाव, भगवान के स्वभाव को जरा वहां पर देखिए कि जब पूतना ने विष्पान कराया तो पूतना को गति कौन परमात्मा दे रहे हैं? जो मैया अपने लाला को दूध पिलाती है तो जो अपनी मां को गति दी वही पूतना को गति दे रहे हैं, ऐसे दयालु वो परमात्मा। तो आप जरा आगे की चर्चा तो हमारे वृंदावन से पूज्य ब्रह्मचर्य जी महाराज विराजमान है, यहां पर दिव्य कथा सुनाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो स्मरण हुआ कि ऐसा स्वभाव भगवान का, और बस यही स्वभाव पूज्य महाराज श्री जी का मैंने वृंदावन में देखा, आंखों से देखा। बड़े बड़े विद्वान उस वृंदावन की भूमि में महाराज जैसी लताएं पताओं में बैठ करके भगवान श्री श्याम सुंदर ने वेणुवादन महाराज किया तो सब लोग उनके पास पहुंचे, लेकिन जब सामने पहुंचे तो बड़ा आनंद, और जब भगवान श्री श्याम सुंदर वृंदावन से मथुरा की तरफ जा रहे हैं तो बस दुख हो रहा है। हमारे जीवन की यही सच्ची साधना है कि हमारे आराध्य जब तक हमारे साथ का सहयोग हो तभी तक हमको आनंद मिलता है। तो पूज्य महाराज श्री जी के जीवन पर माने उस वृंदावन की भूमि में और उस आनंद वृंदावन में महाराज सब पहले से ही जाकर के बैठ जाते थे और महाराज श्री जी रस वर्षा कराते थे। और सज्जनों बात छोड़िए, व्यक्ति तो ठीक है, व्यक्ति तो किसी के भी वाणी से प्रभावित हो सकता है, लेकिन उस कदम के वृक्ष में जिसका मात्र दर्शन करने से जीव भगता है, तो पूज्य महाराज श्री जी जब वहां पर बैठ करके, राधा गोपाल जी का मंदिर है और वहां पर बड़ा सुंदर बगीचा है, वहां पर बैठ करके जब महाराज श्री जी कथा सुनाते थे तो स्वयं उस कदम के वृक्ष से निकल करके काली नांग बैठ करके कथा सुनता था। ये सच्चाई की बात है। तो कई लोग तो डरते थे और पूज्य महाराज श्री जी ने कहा, डरो मत, इनको दूध रखो, दूध पिलाओ। और दूध रखते थे लोग, और वो सर्फ कथा जब तक चलती थी कुछ भी नहीं लेता था, और कथा का विश्राम दूध पी करके फिर उसी कदम के वृक्ष में ओम में घुस जाता था। अब आप विचार करें, ठीक है कहना सुनना, सबकी अपनी वाणी है, अपनी अपनी बुद्धि है, लेकिन ऐसी महापुरुष का जिसको दर्शन हो गया वो धन्य हो गया। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऐसे महापुरुष ने इस जगत को, जैसे अभी पूर्व में बड़ी सुंदर वो बात थी कि यही महापुरुष लोग अपने जीवन में कितना तपते थे, कितनी दूर दूर जाते थे और सत्संग श्रवण करके, चिंतन मनन करके, और आपके यही बंबई में आकर के बड़ी सुगमता से आपको सराबोर करा देते थे। यही है संत का काम। तो पूज्य महाराज श्री जी के जीवन की वो लीला है कि जैसे भगवान श्री श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ करके, माने वृंदावन को छोड़ के मथुरा की तरफ गए तो सारा ब्रज दुखीमय हो गया। तो वही वो जाकी का दर्शन है। बहुत छोटा सा था मैं और मैंने देखा, पूज्य महाराज जी के उस रथ पर मैं ही था, उन कालों में पैंट शर्ट पहने हुए था, नाव में जब गए तो वो दृश्य आज भी दिखाई दे रहा है। वृंदावन की गलियों में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, चाहे वो रामानुजाचार्य जी का घर हो, चाहे वो निम्बार्काचार्य जी का हो, चाहे जिस संप्रदाय से हो, महाराज श्री जी के लिए सब रो रहे कि अब हम क्या करेंगे। हर व्यक्ति रोया
कि अब हम कैसे जिएंगे। यही तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं भागवत की कथा में, कि जब तक वृंदावन में तब तक तो आनंद ही आनंद है, और वृंदावन से मथुरा की ओर चले तो सबको दुख, कि अब दुख क्यों हो रहा है। क्योंकि गाय कहती है कि अब मेरे सिर में कौन ऐसा हस्त कमल फिर आएगा। बछड़े कहते हैं कि अब हमारे साथ गले में लिपट करके कौन खेल खेलेगा। लताएं पताएं कहती हैं हमारे साथ बैठ करके कौन झूला झूलेगा। मोर कहते हैं कि अब हमारे सामने खड़े होकर के त्रिभुवन मूर्ति में कौन दर्शन देगा। एक एक आप दृष्टि का चिंतन करें, पूरा वृज कण कण रो रहा है। बस यही स्थिति है जो साधक है, जो पूर्ण है। अर्धम अर्धम की बात नहीं है सज्जनों, ध्यान रखना। जो पूर्ण है, जिन्होंने अपना जीवन निछावर कर रखा है, हरे अपने दिल से विचार करो। यशोदा मैया लाला को क्षण मात्र नहीं देखती तो ढूंढती कहां गए। हम लोगों की यही सच्ची आराधना है कि जैसे वो व्रजवासी सब अपने प्यारे के लिए रोते हैं, ऐसी बड़े बड़े साधक भगवान के स्वरूप स्वयं पूज्य महाराज श्री जी के लिए रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम, वो ज्ञान, वो भक्ति, वो वैराग कहां मिलेगा, वो सुख कहां मिलेगा। तो सज्जनों, जो ईमानदारी से, दिखावटी से नहीं, आज पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में आज अपने दिल का मार्जन करके जाना। आप लोग ये ध्यान रखना, यदि आपने अपने दिल का मार्जन ठीक ठीक नहीं किया तो सज्जनों भटक जाओगे। क्योंकि आज बड़ी दयनीय स्थिति है। इसलिए बचपन पर मैंने सुना था कि जब बालकों को नींद नहीं आती तो माता लोरी सुनाती थी, लोरी सुनाते थे तब बालक को नींद आती थी। ये आप लोगों का कर्तव्य है कि आप अपने घर में समय दीजिए, क्योंकि आप लोगों से ये बताना पड़ेगा कि जो हमको महाराज श्री जी ने दिया है बेटा, उसी की बदौलत से तुम आनंद कर रहे हो। ये यहां बैठ करके कोरी बातों से काम नहीं चलता, ध्यान रखना। ये दिखावटी लिफाफे से काम नहीं चलता। इसलिए आप लोगों को ये पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में बैठ करके ये विचार करना है कि हम लोग घर में जाकर के बिजनेस करिए, दुकानदारी करिए, सबसे मिलिए, लेकिन घर में समय देना शुरू कर दीजिए। अपने बच्चों से बैठ करके बोलिए कि बेटा, इन महापुरुषों से हमने ये प्राप्त किया है, इसलिए तुम लोग भी इन महापुरुषों के चरणों में लग जाओ तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, नहीं तो बेटा भटक जाओगे। इसलिए ये कहना ठीक है कि आज समाज के सामने खड़े होकर के बोल देते हैं कि हम महाराज जी के अनन्य हैं, तो महाराज जी के सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं। महाराज जी ने जो अपने जीवन में अपनाया है वो आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तब तो ठीक है कि आप महाराज जी के हैं। केवल हमारा जगत में कुछ नहीं हो रहा है और केवल महाराज जी का नाम स्मरण करके हम कुछ अपना फायदा कर ले तो भैया इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे महापुरुषों के इन दिव्य अवसरों में बैठ करके चिंतन करें, मनन करें, प्रार्थना करें कि हे पूज्य महाराज जी, हम में तो वो शक्ति भी नहीं है कि हम आपके स्वरूप का दर्शन कर सके, तो हे प्रभु, आप अपनी शक्ति दे करके हमारे मन को अपने चरणों में लगाएं, हमारे बाल बच्चों को भी अपने चरणों में किसी भी तरीके से लगाएं। मानता हूं कि आज का समय दबाव देने का नहीं है, लेकिन अपने घर में बैठ करके चर्चा करने का तो है। बोल तो सकते हैं कि देखो, आज जो हमको मिला, अरे याद करो आपकी माता पिता यदि महाराज श्री जी के चरणों में नहीं लगे होते तो आज आप लोग भी आज यहां बैठे भी नहीं होते। तो हमको ये सोचना है, हमको ये समझना है, हमको ये चिंतन करना है, तब हम अपनी सच्ची साधना समझेंगे कि हमने तो अपना जीवन अपने आराध्य के चरणों में लगाया, हमारी पीढ़ी भी इन आराध्यों में लगी हुई है, इनके चरणों में लगी हुई है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, यही जीवन की सच्ची आराधना है। अपने स्वामी के अतिरिक्त किसी को भी हम सम्मान करें, प्रणाम करें, आदर करें सबका, लेकिन अपने आराध्य के सामने, अपने आराध्य के स्वरूप किसी को हम नहीं समझते, क्योंकि हमारे आराध्य हमारे दिल पर बैठ जाए तो उससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं हो सकता। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची आराधना है, यही सच्चा प्रेम है। और एक शब्द हमारे परमादरणीय श्री गिरीश जी बैठे हुए हैं, तो उनके हृदय का वो शब्द है और वही हृदय से मैं भी पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में ही अर्पित करके अपनी वाणी को अर्पित करूंगा, अधिक समय तो मैं नहीं लूंगा। सब कुछ हर लो मेरा पर मेरे मन से कहीं न जाना, सब कुछ हर लो मेरा पर मेरे मन से कहीं न जाना, एक सहारा तेरा है गोविंद और ना कोई ठिकाना, एक सहारा तेरा है गोविंद और ना कोई ठिकाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी अरजु हमारी जी। आप विचार करिए, सोचिए, समझिए, ऐसे चरणों में बैठ करके प्रार्थना करें, यही हमारी साधना है कि प्रभु हमारा सब कुछ आप ले लो, लेकिन पूज्य महाराज श्री जी आप अपने नित्य स्वरूप का, नित्य अपने लीला का, नित्य अपने धाम का, नित्य अपने नाम का स्मरण कराते रहना, यही सच्ची साधना है। अंत में आश्रम की तरफ से जो हमारे पूज्य आनंद वृंदावन के आश्रम के वर्तमान स्थिति पर जो महंत हैं परम पूज्य स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज की तरफ से प्रेमपुरी के सभी ट्रस्टियों को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आशीर्वाद उनकी तरफ से, परम पूज्य स्वामी श्री श्रवणानंद जी महाराज की तरफ से आप सबका, आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, परम पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज जो पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में आज भी निरंतर अपनी साधना अपनी आराधना में लगे हुए हैं, तो उनकी तरफ से सभी ट्रस्टियों को और सभी यहाँ के सत्संगियों को और पूज्य महाराज श्री जी के जितने भी यहाँ पर परिकर माने आप सब उनके हैं और वो आपके हैं, इसलिए पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी ट्रस्टियों को और हमारे ट्रस्टीगणों की तरफ से आप सबका अभिनंदन जो आप ऐसे अवसर पर आए। और मैं हमेशा इस बात को जानता हूं क्योंकि पूज्य महाराज श्री जी का वचन है कि जब ऐसी तिथियां होती हैं, जब ऐसे दिन आते हैं तो ऐसे महापुरुष भी नित्य आकर के यहाँ बैठ जाते हैं, जैसे जहां भी कथा होती है तो श्री हनुमंत लाल जी आते हैं और बैठ से बैठ जाते हैं, सुनते हैं, आनंद से फिर चले जाते हैं, तो ऐसे ही बोले महाराज जी महापुरुष लोग भी नित्य आते हैं, अपना दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे ट्रस्टी गणों की तरफ से भी आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत बानी अभिनंदन, आप सब लोग ईमानदारी से आप लोग लगे रहे, चिंतन मनन करते रहे, यही महाराज जी की सच्ची आराधना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस बालक का जो भी बोले महाराज अपनी वाणी के द्वारा सुनाया, उस सब महाराज जी के ही है, इसलिए उन्हीं के ही पावन चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हुआ राधे 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 राधे।
बहुत सुंदर भाव प्रकट किए हमारे ब्रह्मचारी श्री प्रीतमानंद जी महाराज ने। महाराज श्री का पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई, महाराज श्री किसके नहीं थे, इस भाव की अभिव्यक्ति करी। और महाराज श्री के सामने भी एक शिकायत आई कि महाराज श्री लोग आपका नाम लेके और कुछ कर रहे हैं, तो महाराज श्री ने वहां कहा कि लोग भगवान का नाम लेके कर लेते हैं तो उसमें क्या आपत्ति है, तो तुम लोग किसी पे आपत्ति मत करो कि इसने हमारा नाम लेके ये किया, हमारा नाम लेके वो किया, लोग भगवान का नाम लेके कर रहे हैं, हम भगवान का अपने को बोल दिया कि हम भगवान का नाम लेके कर रहे हैं, लोग हमारा नाम ही लेके कर रहे हैं तो क्या हर्ज, इतना सहज वो है चौपाई भी अपना, सपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। ये जितने महाराज जी कहते थे इनके लिए अलग से भगवान कहां से आएगा, जो गिरे हुए हैं पतित हैं पापी हैं उनके लिए किस नए भगवान की हम रचना करें, वही ना भगवान आके उठाएगा। तो महाराज जी का नाम लेके अगर कोई तर रहा है तो उसमें हमको क्या हर्ज है। तो ये महाराज श्री का एक दृष्टिकोण है, उदात्त दृष्टिकोण। और अच्छा, ये जब जाके खड़े हो गए भगवान के पास तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मोते अधिक संत कर लेखा, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि ये फाइल हमारे यहां नहीं साइन होगी, वो जाओ उधर। और संत कहां गए, तो संत हृदय नवनीत समाना, बड़ा घुमा फिरा के बड़ा मजेदार है वो, रूपक बनता है हमारे लोग बांधते हैं। अच्छा, नवनीत समाना, ये मक्खन जैसा जिनका हृदय है वो संत है, तो ये मक्खन आया कहां से, तो बोले कन्हैया के पास जाओ। कन्हैया माखन मिश्री का, तो ये फिर वो मक्खन क्या है, तो बोले कि स्वच्छ हृदय वाला, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। फिर वो मक्खन कहां है, वो आपका हृदय मक्खन है, वो उस मक्खन कैसे निकलेगा कि सफेद हो जाए, सफेद एकदम मुलायम मुलायम। महाराज जी कहते थे भक्त ही जो ये भात है, भात भात चावल, तो जब पक जाए तो एकदम उसमें कणिका न रह जाए तो भक्त, पका हुआ भात भक्त। तो ऐसे ये महाराज जी का ही तो स्मरण है। वहां पे विद्वानों की व्याख्या जब होती है वृंदावन में तो बोलते हैं राध साध संसिद्धो धातु से ये आराधना शब्द बनता है। तो कहे वो ये राध साध संसिद्धो क्या होता है, तो कहे कोई बीज ले और उसको उलट पलट के भून दिया जाए, अब उसमें कोई भी इच्छा का अंकुर न रह जाए, वो बीज अगर डाला जाएगा तो उगेगा ही नहीं उसमें से कुछ। तो ये राध साध आराधना हमारी ऐसी कि हमको भून के रख दे, मतलब हम शरणागत हो जाए या हमारी प्रपत्ति हो जाए, अब ईश्वर की मर्जी ही चलेगी, अब हमारे गुरुदेव की मर्जी ही चलेगी, हमारी कोई मर्जी ही नहीं रहेगी, ये है आराधना। एक दृष्टिकोण है, आपकी आराधना अपने ढंग की है, सबकी अपनी अपनी आराधना है, सबके अपने अपने आराध्य है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर्वेश चैतन्य जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि वो अपने मुखारविंद से महाराज श्री के प्रति इस आराधना में हम लोगों को कुछ सुनाएं। इनका तो बहुत ही वेदांत का वो उत्कृष्ट प्रकृष्ट अध्ययन है कि हमको सुनने में आनंद आता है। तो आत्मा वा इदमग्र आसीत, और जो भी अपने भाव पुष्पांजलि आप।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। परम श्रद्धेय
इस आराधन महोत्सव के सभा के अध्यक्ष महोदय महामंगेश्वर स्वामी जी के चरणों में कोच सह नमन, मंच पर विराजमान अभी प्रहलाद चरित्र की भी कथा सुना, अभी भी आपने कितनी भाव भरी, एकदम हृदय एकदम बड़ा शांत हो गया। स्वामी प्रीतमानंद जी महाराज आगे सुनने वाले हैं हमारे बाद भी, उधर भागवत कथा में भी स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज अभी पधारे स्पिरिचुअल सेंटर में, वेदांत का पूर्व ग्रंथ जानते ही हैं, उपनिषदों में मांडुक्य कार्य का स्वाध्याय करा रहे हैं स्वामी ज्ञान चेतन जी महाराज। यहां विद्वान महाराज जी के पौत्र सोमदत्त जी महाराज, और इनके बारे में तो क्या बताएं। देखो कहते हैं ना, पिता ही पुत्र के रूप में पैदा होता है, ये स्तुति का वाक्य है, पिता ही पुत्र के रूप में आविर्भाव हुआ और फिर वो जब पिता बना तो वही अंश पौत्र में डाला, तो उनको देख करके न, क्योंकि हमारा सौभाग्य तो नहीं रहा महाराज जी का दर्शन किया, मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं रहा, महाराज जी ने बताया हम तो उस रथ पर बैठे हुए थे, ये तो सौभाग्यशाली रहे, लेकिन हमारा इतना सौभाग्य नहीं रहा, लेकिन उनको देख करके महाराज जी की पूरी स्मृति आ जाती है मेरे को, सच बताऊं। और उसका इतने उल्लास से मिलते हैं सुंदर जी महाराज, जब कभी मेरे से कहते आपके रूप में मैं अपना संन्यास देख लेता हूं, वो ऐसा बोलते हैं, आपके रूप में मैं अपना संन्यास देख लेता हूं। महाराज जी के विषय में सच बताऊं, कुछ भी कहना एक सूर्य को दीपक दिखाने के तुल्य है, लेकिन फिर भी इस महोत्सव में कुछ न कुछ बोलना है, फिर बोल क्यों रहे हैं। तो भामती टीकाकार वाचस्पति मिश्र महाराज भाव उसमें कहते हैं ब्रह्मसूत्र की व्याख्या में, भगवान शंकराचार्य जी का जो भाष्य है ना, वह पूरा गंगा के तुल्य है, हमारी जो बांगड़ी है ना गंदी नाली है। इतने बड़े विद्वान जिन्होंने कई दर्शनों पर भाष्य टीका लिखी वाचस्पति मिश्र, लेकिन कहते हैं अपनी जबान जो है अपनी बांगड़ी क्या है, एक गंदे नाले के तुल्य है। लेकिन यही गंदा नाला उस गंगा में मिल जाए तो क्या बन जाता है, पवित्र गंगा बन जाता है। तो महाराज जी के विषय में कुछ दो शब्द बोल करके हम अपनी वाणी को पवित्र करना लक्ष्य है, अन्यथा हमसे अधिक तो महाराज जी के पास आप रहे हैं, उनका सत्संग आप सुने हैं, उनका जीवन आपने देखा है, आपको हम क्या बता सकते हैं। सच बताऊं, महाराज जी की एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी साधना एवं ब्रह्म अनुभूति, ऐसा कहते हैं, और सारी पुस्तकें तो भक्तों ने लिखी हैं सीडी सुन सुन करके, हम भी लिखते हैं कुछ पुस्तकें, लेकिन क्या होता है कि कुछ न कुछ अपना भाव भी उसमें डालते हैं, और उस भाव को जिसने स्वयं बोला है उस भाव को हम हो सकता है पकड़ न पावे, किस भाव से बोला, किस अभिव्यक्ति से बोला, लेकिन कहते हैं साधना एवं ब्राह्मण भूत महाराज जी स्वयं अपने हाथों से लिखी है, सही है ना, स्वयं अपने हाथों से ही लिखी है, ऐसा हमने पढ़ा उसमें, ऐसे ऐसी महाराज जी की जीवन की घटित घटनाएं हैं, सही है। कभी उस पुस्तक को आप लोग एक बार नहीं पढ़ना, हमने भी तीन चार बार पढ़ी है, कई बार पढ़ना उस पुस्तक को आप लोग। तो महापुरुषों के किसी भी उत्सव में, चाहे संन्यास उत्सव हो, चाहे आराधन महोत्सव हो, या कोई भी उत्सव हो, उन उत्सवों में आकर के उनकी जो हम उपासना आराधना करते हैं, तो उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करके अपना कल्याण कर ले में, यही उनकी सबसे बड़ी आराधना है। सच बताओ, सबसे बड़ी आराधना। देखो अभी प्रबोध सुधाकर में ये चल रहा भक्ति का प्रकरण है। दो प्रकार की भक्ति है, एक स्थूल भक्ति, दूसरी कौन सी भक्ति है? सूक्ष्म भक्ति। सविशेष के साथ तो स्थूल भक्ति चलेगी, सविशेष के साथ क्या चलेगा? स्थूल भक्ति। और स्थूल भक्ति की उपासक का नाम क्या है? व्यक्त उपासक। क्या नाम है? व्यक्त उपासक। और जब व्यक्ति ने सविशेष रूप को छोड़ दिया और निर्विशेष रूप में वो स्थित हुए, ताज महाराज जी का वही दिवस है। कौन सा दिवस? अपने सविशेष रूप को छोड़ करके निर्विशेष रूप में अवस्थित होकर के पूरी सृष्टि के कण कण में समा गए, वो स्थिति आज है। तो उस अवस्था में जो भक्ति होगी वह भक्ति कौन सी होगी? सूक्ष्म भक्ति होगी। वह भक्ति होगी अव्यक्त उपासना की। महाराज जी सच बताऊं, हमसे दूर नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं शरीर के साथ थे तो हमसे कहीं कहीं दूर थे। कभी वृंदावन में है, कभी मुंबई में है, कहीं काशी में है, कहीं और हैं। लेकिन जैसे महाराज जी ने इस सविशेषता को छोड़ा और निर्विशेष रूप में सबके भीतर समा करके और सबको प्रेरित, सबके अंतःकरण में बैठ करके सबको प्रेरित करने वाले कौन है? महाराज श्री ही हैं। और महाराज श्री हम सबके बीच में आज भी विराजमान हैं। उनका जीवन आप देखना, जीवन दर्शन देखना, और उनके जीवन दर्शन से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। महाराज जी बताते हैं, महाराज जी का अपना उपासना का प्रकरण बहुत बढ़िया रहा, कथा आदि उसमें कर्मकांड पूरी जजमानी थी। ब्राह्मण होने के नाते पूरी जजमानी थी, पूरे भक्त भी थी, भक्तों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ न कुछ तो उनको अभाव लग ही रहा था। और मन में एक अंकुर था, किसका? संन्यास का अंकुर था। क्योंकि देखना, कोई व्यक्ति सन्यासी बनता नहीं है, संन्यास का अंकुर लेकर के, संन्यास का संस्कार लेकर के व्यक्ति पैदा होता है। और जैसे ही व्यक्ति ऐसा माहौल देखता है उधर खींचता है। तो महाराज जी का जो जीवन मैंने पढ़ा उसमें संतों से उनका एक आकर्षण अद्भुत था। जहां भी जाते थे संतों से मिलते थे। उस समय भी कहते थे बचपन में ही मैंने अष्टावक्र गीता याद कर लिया था, एक महापुरुष से मैंने सुन लिया था अष्टावक्र गीता, और फिर उन महापुरुषों से मैंने कहा व्याख्या। जब वेदांत का पूर्व ग्रंथ है यदि माना जाए तो दो ही ग्रंथ हैं, कौन से? एक अष्टावक्र गीता जिसको हम लोग बोलते हैं महात्माओं में, और दूसरा योग वासिष्ठ। कहते योग वासिष्ठ बहुत पूर्व वेदांत का ग्रंथ है, और दूसरा अष्टावक्र गीता। उपनिषद आदि है तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी इसी भाषा में एक सामान्य, उसमें क्योंकि श्रुतियों को सुनने का पढ़ने का अधिकार भी तो आज तो सब सुन रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में पढ़ने और सुनने का अधिकार भी एक विशिष्ट साधक के लिए ही था। कौन से? उपनिषद, अथवा उपनिषद का श्रवण का अधिकार सबका नहीं था। किसका था? एक विशिष्ट साधक। यज्ञोपवीत संस्कार होने के अनंतर ही श्रुति का अध्ययन करना चाहिए, कराना भी चाहिए, नियम था। चलो क्या करें, देश काल परिस्थितियां सब बदलती जा रही हैं। तो उस समय भी महाराज जी जब कहते हैं घर से एक बार छोड़ के गए कर्णवास में, और दो तीन चार महीने रहे, साथ तो तीन महीने रहे, और उनका बहुत तबीयत खराब हो गई, पेट बहुत खराब हो गया। फिर शायद वहां महाराज जी का नाम तो नहीं आता था, वहां से महाराज जी को भेज दिया घर में। तो देखना ऐसी बात कहने वाला कोई हिम्मत है। कहते हैं अब अभय जो अद्वैत पद में प्रतिष्ठित हुए, जो निडर हुए, वही अपने घर की ये सब चर्चाएं भी कर सकता है। महाराज जी गए, मेरे जाने के बाद घर वालों को खुशी नहीं हुई, सीधे कहते हैं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो सोचे थे कि जजमानी करने गया होगा, कुछ न कुछ माल ले आएगा, और मैं तो और दुबला होकर के बीमार होकर के आया। तब मैंने संसार के स्वरूप को जाना और जाना अच्छी तरह से, पहले भी अनुभव तो था ही, लेकिन फिर भी हो सकता सूक्ष्म संस्कार ला होगा। उन सब घटनाओं के बाद सूक्ष्म संस्कार भी समाप्त हो गए, और सबकी रक्षा करने वाले वो परमात्मा हैं, ऐसा निश्चय करके बाद में तो महाराज एकदम घर से मोह छोड़ करके पूरी तरह से ऐसे गए कि दोबारा वापस आवे ही नहीं, ऐसे चले गए। क्यों 75 के बाद क्यों नहीं गए? क्योंकि संन्यास का नियम तो 75 के बाद का है। लगभग महाराज कितने साल में गए? नहीं, संन्यास 31 में। तो जो श्रुति का एक वाक्य है, ठीक है, जिस दिन वैराग्य पैदा हुए, ये इंतजार नहीं करना। मैं तो आपको कई बार बोलता हूं कि आप पढ़ाई करते हो, कितने साल पढ़ाई का नियम है? 25 साल है ना। अब मान लो आपकी नौकरी 22 साल में लग गई, आईएएस आपने क्वालिफाई कर लिया, अब बताओ क्या करोगे? आईएएस छोड़ दोगे? अभी पढ़ाई करोगे, 2 साल पूरी करनी है, इसके बाद आईएएस दोगे या नौकरी कर लोगे? आप बताओ। अरे जिसलिए हम पढ़ाई कर रहे थे, हमारा लक्ष्य क्या हुआ? पूरा हुआ। तो गृहस्थ धर्म में गए महाराज जी, लेकिन जिस क्षण वैराग्य पैदा हो जाए उस क्षण ही व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिए। ब्रह्मचर्यात्वा गृहात्वा वनात्वा, ब्रह्मचर्य से होवे अथवा क्या हो से, गृहस्थ से होवे अथवा वानप्रस्थ से होवे। महाराज जी तो बता रहे 16 साल से ही भूत चढ़ा हुआ था, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई, ऐसा समय आया, ऐसा कुछ प्रबल प्रारब्ध रहा होगा, सोमदत्त के रूप में महाराज जी का प्रागट्य होना रहा होगा, इसलिए महाराज जी को किसी प्रारब्धवश गृहस्थ में जाना पड़ा। अब बाद में लेकिन वहां भी उनको वहां रस नहीं आया। जिस गृह 31 साल की उम्र तो एक जवानी की उम्र होती है, भोग की उम्र होती है, लेकिन उस साल में उनको भोग ही नहीं रस लगे, और सब छोड़ करके पूरी तरह से उस परमात्मा पर समर्पित होकर के परमात्मा ही बन गए। ऐसे महापुरुषों का जीवन पढ़ करके, उनका चिंतन करके, अपने आप को उन्हीं के अनुसार ढाल करके हम अपना कल्याण कर लेवे, यही हमारे सच्चा उन महापुरुषों की आराधना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
बहुत ही सुंदर भाव। दर्शन के बारे में महाराज जी का जैसे कह रहे हैं, स्वामी जी के दर्शन नहीं हुआ, तो कृष्ण ने कहा कि हमारा वांग्मय स्वरूप ये है, तो इस ढंग से महाराज जी के जो ग्रंथ हैं वो महाराज जी के दर्शन रूप में हमारे साथ हैं। महाराज जी का पावन प्रसंग है जीवन के प्रसंग में। महाराज जी को अंत में बताया लोगों ने कि आप अपना एक जीवनी लिखवा दो, तो कहे कौन लिखेगा? महाराज जी का जो सीधा प्रश्न होता था, मैं बोल कौन लिखेगा, तो लोगों ने नहीं बोला, कुछ विद्वानों का नाम लिया कि वो लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। अच्छे अच्छे उद्भट विद्वान थे उस समय, विद्यानिवास मिश्र थे और आदि आदि। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, गांधी जी का जीवन चरित लिखवाना हो और वो नेहरू जी एक लिखें और एक चर्चिल लिखे, तो दोनों एक ही होगा क्या? तो कहे कि हमारी बातें हम ही जानते हैं और कैसे कोई जानेगा। तो कहे ठीक है आप ही लिखवा दो, लोग भी तो पकड़े रहते हैं, छोड़ते तो है नहीं, तो कहे आप ही लिखवा दो। तो कहे देखो हमारा जब से मैंने होश संभाला है तब से हमारे ऊपर महात्माओं का ही साया रहा है, मैं महात्माओं की सन्निधि में रहा हूं, तो मैंने जिस महात्मा से जो सीखा वो मैं तुमको बता सकता हूं। हमारा जीवन और कुछ है नहीं, अलग से हमारा जीवन जानना चाहते तो वो कुछ नहीं है, जो मैंने महात्माओं से सीखा है वो मैं लिखवा सकता हूं। तो उसमें एक क्रम हुआ और सवेरे 3:30 बजे बाबा जी को बुला लेते थे और बैठा लेते थे और 1 घंटे 1.5 घंटे में एक महात्मा का लिखवाते थे। फिर धीरे धीरे वो आनंदबोध में छपता गया, कई सालों तक छपा। फिर उसके बाद संकलन करके हमारे विष्णु गग्गल जी ने उसका पावन प्रसंग करके एक ग्रंथ भी निकाल दिया। तो उसमें अब देखो आज तो आराधना दिवस है और ये महाराज जी की आराधना है कि वो किसी भी महात्मा से कोई भी बात लिए हों तो बिना उसका नाम लिए नहीं बोलते थे। गजब की स्मरण और गजब की कृतज्ञता, ये वो कृतज्ञता जीवन में एक छोटी सी छोटी बात, उस महात्मा का नाम लेके बोलते थे। उड़िया बाबा जी का महाराज का नाम सबसे पहले, हमारे प्रेमपुरी जी का क्या क्या नहीं सीखा प्रेमपुरी जी महाराज से। क्योंकि हम यहां आए शुरू शुरू में तो दोनों रोते थे, प्रेमपुरी जी विदा नहीं करने जाते थे कि मैं विदा करने जाऊंगा तो तुमको विदा नहीं कर पाऊंगा और महात्मा को यह स्वरूप शोभा नहीं देता, ये बोल के रोते थे प्रेमपुरी जी महाराज यहां पे कि मैं तुमको जाऊं ऐसा मेरे मुंह से निकलता नहीं और मैं तुमको रोक दूं ये हमसे होता नहीं। मतलब ये कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति, हमारे जो वेदांतनिष्ठ और झरझर झरझर आंसू गिरते थे प्रेमपुरी जी महाराज से। यहां आए तो विश्राम प्रेम कुटीर में पहले तो हुआ करता था, तो वहां विश्राम की कुटिया थी तो महाराज जी दोपहर में सो जाते थे, तो प्रेमपुरी जी किसी को भेज के जगा देते थे और बुला लेते थे, कोई मिलने आ जाता था और बोला महाराज जी को कि देखो सोना हो तो बम्बई मत आना, दोपहर में सोना हो तो बम्बई मत आना, ऐसे करके मतलब ये महाराज जी बोले और ये भी बात बता दिए कि देखो ऐसा ऐसा होता है, बम्बई में जाने में लोगों की सुविधा देखनी पड़ती है, महात्मा अपनी सुविधा न देखे। मतलब ये कौन सिखाएगा, ये कौन सिखाएगा, इतनी छोटी छोटी बात पे महाराज जी की दृष्टि हुआ करती थी। करपात्री जी महाराज का महाराज जी उल्लेख करते हैं, गुरु भाई थे करपात्री जी महाराज हमारे महाराज जी के, मघईपुर के बाबा, बचपन में मघईपुर के बाबा, मोकलपुर के बाबा, सहेपुर के बाबा, ये सब गांव के आसपास के इलाके हैं। सहेपुर अभी भी सत्संग हुआ था, वहां के लोग अभी भी रोते हैं, पुराने बुजुर्ग लोग जो देखे हैं, तो हमको ये मिला है, हमको ये मिला है, हमको ये मिला है, ऐसे करके। तो ये शरणानंद जी महाराज, हरि बाबा जी, आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ का तो महाराज जी ने इतना संस्मरण किया है। एक संस्मरण महाराज जी माँ का सुनाते थे, जब कोई शिकायत लेके माँ के पास जाता था कि फला ने ये किया, फला ने वो किया, या भगवान के प्रति या भक्त के प्रति कोई आक्षेप करता था कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो माँ बहुत प्रेम से बोलती थी, बेटा तुम जहां हो वहां से ऐसे ही दिखता है। उसको समझाने का प्रयास नहीं करती थी, ये बोलती थी तुम बेटा जहां हो वहां से ये अभी ऐसे ही दिखेगा, मतलब अपनी स्थिति आप उठाओ। ये माँ के हरि कथा कथा बाकी सब व्यथा व्यथा, ये महाराज जी उनका नाम लेके हमेशा बोलते थे। तो ये महात्माओं से महाराज जी का जीवन, महाराज जी की आराधना भरी पड़ी हुई है। हम उन लोगों का आज पुण्यस्मरण करते हैं, ये महाराज जी के, महाराज जी को महाराज जी बनाने में इन लोगों का योगदान रहा है इसलिए। और महाराज जी जो थे वो थे हमारे बीच में, स्वामी श्री ज्ञान चैतन्य जी महाराज पधार चुके हैं, मैं उनका समय चाहता हूं कि महाराज जी के संस्मरण में जाए। समय अल्प रह गया है तो
निश्चित हो जाए तो ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट जैसे।
हाँ, आधे घंटे हैं, आधे घंटे में हमारे पास तीन लोग हैं,
10 मिनट निर्धारित रहे तो व्यवस्था के लिए करना पड़ेगा।
हरि गो विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तरगतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिभूत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदम् श्रीदक्षिणामूर्तये शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच में समुपस्थित आज के सभाध्यक्ष और अन्य यतिवृंद, भक्तिमती माताओं और सज्जनों, आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया है महाराज श्री के उपलक्ष्य में आराधना दिवस, अब ये आराधना उनके जीवन दर्शन को श्रवण करके उनके प्रति अपनी आस्था को बढ़ाना और उनके मार्गदर्शन पर चलना, यही हमारी आराधना है वास्तविक। यद्यपि मैंने भी जैसे अभी भी महाराज श्री ने कहा है कि महाराज श्री को अभी हमने देखा नहीं है, वैसे हमने भी महाराज श्री को देखा नहीं है, किंतु जहां पर वास करते हैं, जहां पर जन्म भी महाराज श्री की काशी, उनका घर भी विश्वनाथ जी के ठीक बगल ही में है। एक प्रकार से विश्वनाथ जी ने ही अपने अनन्य भक्त को मुंबई वासियों के लिए भेजा है। ऐसे हमें यदि हम समझते हैं तो, क्योंकि भक्त की स्तुति और भक्त के प्रति जो श्रद्धा सेवा यदि हमारी जगती है तो भगवान को अधिक खुशी होती है। जब काशी से ही वो आए हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो भगवान का ही, भगवान शंकर का ही वो अंश है। और वैसे तो गीता में तो कहते ही ममय वंश हो जीवलोके, तो सभी उस परमात्मा के अंश है। और महाराज श्री का जो जीवन है, जब उनके ग्रंथों को हम देखते हैं, जो भी उन्होंने ग्रंथों में बोला है, एक सामान्य चिंतन होता है और एक विशिष्ट चिंतन होता है। विशिष्ट चिंतन उसको कहते हैं रहस्य को, रहस्य उसको कहते हैं कि जो कठिन से कठिन बात हमें सहज रूप से समझ में आ जावे, जिसके कारण वो है रहस्य। अब महाराज श्री के जो भी ग्रंथ है उसमें देखा जाए तो वो सभी रहस्य ही है, क्योंकि महापुरुषों की बुद्धि में जो कुछ होता है उसको समझना अथवा ग्रंथ के प्रत्येक पंक्ति को, उसके रहस्य को, उनकी उन पंक्तियों के सूक्ष्म विचारों को समझना सामान्य जीवों की बस की बात नहीं होती है। जब वो समझाते हैं हमें तो हमें लगता है इसका अर्थ तो बहुत सरल है, कि तो हम अपने मन से यदि पंक्ति का अर्थ लगाने जाएंगे तो नहीं लग पाएगा। उन्हीं बातों को वो सरल रूप से क्या है बताते हैं। और महाराज श्री का जो आराधना दिवस है, वैसे देखा जाए तो आराधना उनका तभी होगा हमारे द्वारा, जो जो उन्होंने हमें आदेश दिया है उस आदेश का यदि हम पालन करते हैं तो हम उनकी वास्तविक आराधना कर रहे हैं। और जो आज का दिन है, एक वर्ष में एक दिन हम आप लोग मनाते होंगे, तो ये जो दिन है ये इसलिए हम मनाते हैं, यदि भी रोज तो उनको हम प्रत्येक दिन जो है रोज का रोज हम दर्शन करते हैं, उनकी कुछ न कुछ किताब पढ़ते हैं, वो एक बात अलग है, किंतु उनका जीवन दर्शन के ऊपर अवलोकन करने के लिए, दृष्टि का क्षेप करने के लिए, दृष्टि डालने के लिए हम एक दिवस क्या करते हैं उनके लिए, उनके जीवनी के लिए, श्रवण करने के लिए क्या करते एक दिन देते हैं। क्यों देते हैं हम लोग? क्योंकि उनका जो जीवन है वो हमारे लिए एक दर्शन है, आदर्श है। आदर्श का अर्थ होता है असमानता दर्शन। आदर्श का मतलब क्या होता है? असमानता तो दर्शन। और लोक व्यवहार में आदर्श का मतलब होता है दर्पण। हम लोग कहते ना इनका जीवन हमारे लिए आदर्श है। जब भी हमारे मन में आता है कि इनका जीवन हमारे लिए आदर्श है तो हम ये जरूर सोचते हैं कि हमें इन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, अथवा उनको देख करके ये पता लगता है कि हम कितने सही है और कितने गलत है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो गए, दर्पण के सामने जब खड़े हो जाते हैं तो हमें क्या प्रतीत होता है? दर्पण के सामने हम जब खड़े हो जाते हैं तो हमें यही प्रतीत होता है कि हमारे शरीर पर कहीं कुछ ऐसा गलत तो नहीं है जिसके कारण जो हमें देख करके कोई हंसे, अथवा हम जो सजे हैं वो सजना हमारा सही सही हुआ है या नहीं, ये दर्पण क्या करता है, हमें दिखाता है ना। जैसे दर्पण के सामने गए तो हमें हमारा दर्शन हो जाता है कि हम सही है या गलत है। तो दर्पण जो है हमारे शरीर को दिखाता है कि शरीर सही है कि गलत नहीं, गलत है, ये दर्पण दिखाता है, अर्थात आदर्श, संस्कृत में इसको आदर्श बोलना। इसी प्रकार महापुरुष भी हमारे लिए दर्पण है, वो हमारे लिए आदर्श है। कैसे आदर्श है, कैसे दर्पण है, जब जब हम उनके सामने चले जाते हैं तो हमें पता ये लगता है कि हम इनके सामने कितने पीछे हैं, अथवा हम बराबरी में हैं क्या, अथवा हम थोड़े से और दूरी पर हैं, ये पता लगता है। हम लोग, आप लोग जब भी किसी महापुरुष के सामने जिनके ऊपर श्रद्धा होती है आपकी, तो उनके सामने आकर के क्या बोलते हैं आप लोग, महाराज श्री आप लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, अभी हमारे में कुछ भी नहीं है। यही बात क्या आप अपने मित्र के सामने खड़े होने के बाद बोलेंगे कि अरे मित्र मैं आपके पीछे बहुत बहुत पीछे हूं, आप तो बहुत आगे हो। आध्यात्मिक जीवन में इतना ध्यान रखना, व्यवहारिक जीवन में तो बात अलग हो जाती है। आध्यात्मिक जीवन में जब आप देखते हैं कि जब महापुरुष के सामने खड़े होते ही हमारे मन में तत्काल ये आता है कि हम बहुत ही पीछे है, इसका दर्शन कैसे हो गया, ये हमें समझ में कैसे आ गया उनके सामने खड़े होने के बाद। इसलिए हम क्या कहते हैं, महापुरुषों का जो जीवन है हमारे लिए क्या है, वो आदर्श है। क्यों, उनका जीवन को देख के ही हमारे जीवन के विषय में पता लगता है कि हमारा जीवन कैसा है, सही है या गलत है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, महापुरुषों की जीवनी को, महापुरुषों को हम सामने लाते हैं और सामने ला करके हमेशा लाते रहते हैं हम लोग, और ला करके क्या करते हैं हम अपने आप को भले ही उनके स्तर तक न पहुंच पाए किंतु जाने का प्रयास तो अवश्य करेंगे, और जाने का प्रयास तो करना ही चाहिए, उसी के लिए तो उन महापुरुषों ने अपने आप को इस तरह से बनाया है, इतना तपस्या में जीवन करके अपने आप को एक विशेष मूर्ति के रूप में स्थापित किया है। सामान्य मूर्ति नहीं होती महापुरुष, जैसे पत्थर को मार मार करके क्या किया जाता है, मारते 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 क्या है वो, वही पत्थर क्या हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, आराधनीय हो जाता है। उसके सामने आते ही क्या है, कुछ देर के लिए हम उसके सामने बैठ करके शांति से क्या है भजन करने की इच्छा होती है। क्यों, वो पत्थर को क्या है मार मार करके उसकी इतनी तपस्या हो गई, इतनी तपस्या हो गई कि वो अब उसके सामने जाते ही क्या हो जाता है, व्यक्ति संसार को भूल करके शांत भाव से क्या है ध्यान करने की इच्छा करता है। इसी प्रकार महापुरुषों के जीवन को हम देखते हैं, उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ न कुछ क्या है इनके जैसे बनना चाहिए, और उनका जीवन ही हमारे लिए आदर्श है। वो आदर्श को हम यदि याद करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ कमी है, अथवा कुछ उनके पीछे है, अथवा उनके बराबर के हैं, कि समझ में आता है, और तत्काल क्या करते हैं हम आराधना के लिए चलते हैं। ओम शांति शांति।
नारायण, बहुत सुंदर शिव चैतन्य जी महाराज ने हम लोगों को सुनाया दर्पण और आदर्श के बारे में। मैं परम पूज्य वृंदावन से, कैमारवन से, राधा कृष्ण पूर्ण मुक्ति धाम से पधारे हमारे परम स्नेही, परम प्रेमास्पद, परमादरणीय पूर्ण चैतन्य जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने वाक पुष्पांजलि।
ओम भद्रम नो अपिवर्तयमनः ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतम देव कंसजानुमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।
परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमात्म स्वरूप स्वामी प्रेमपुरी महाराज के चरणों में सादर नमन करते हुए समादरणीय आज के आराधना महोत्सव के मुख्य बुलाने वाले श्रोताओं के आधार पूज्य महाराज श्री चरण में नमन करते हुए समादरणीय आज के इस महोत्सव के परमाध्यक्ष मंडलेश्वर श्री चरण, परमादरणीय हमारे वृंदावन से पधारे पहला चरित्र पर चर्चा सुनाने वाले संत श्री चरण एवं वर्तमान कथा के प्रवक्ता संत चरण एवं हमारे समीप में बैठे स्वाध्याय कराने वाले संत चरण एवं प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टीगण एवं हमारे पूज्य महाराज श्री की परंपरा से जुड़े द्विज वृंद हमारे सोमदत्त द्विवेदी जी एवं अन्य सभी श्रोताओं, सुनाने को कुछ बाकी नहीं है, सब आप लोग सुन ही चुके हैं और समय भी धीरे धीरे बता रहे हैं। शायद मालूम है कि मेरे को तो 29 से बोलना ही है, तो थोड़ा समय मिले वही ठीक है, क्योंकि ये बिचारे तो जो अभी हमारे संत महापुरुष हैं इनको ज्यादा मिले तो अच्छा है, क्योंकि घर के आदमी होते ना तो बाहर वालों को परोसते हैं, स्वयं तो थोड़ा ही खाते। तो महाराज श्री के बारे में अभी आराधन महोत्सव की बात चल रही, मुझे तो कभी लगता है सजनों कि महाराज का आराधन महोत्सव है कि हमारा आराधना का दिवस है। हम जो इस समय चर्चा कर रहे हैं महाराज श्री के जीवन के विषय में, वो महाराज जी की आराधना नहीं है, वो आराधना किसकी है? हम उस जीवन को अपने जीवन में घटाएं, ये तो हमारी आराधना होगी। महाराज की क्या आराधना है? वो तो सारी आराधना करके अपने पद को प्राप्त कर लिए। और महाराज श्री के बारे में जब मैं सुनता हूं, पुस्तकों को पढ़ता हूं, महापुरुषों से सुनता हूं, तो मुझे भगवान कृष्ण की एक बात याद आती है गीता वाली, वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण मैं सबको देखना ऐसे संत कोई बिरले ही मिला करते हैं, और उनके बारे में जैसे मैंने सुना, एक बार सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, मैं छोटा ही था, पूर्व मध्यम द्वितीय वर्ष में पढ़ता था बनारस में, और मुमुक्षु भवन में एक विद्वत गोष्ठी हुई थी और उसमें महाराज श्री का पहला और अंतिम दर्शन मुझे छोटा था उस समय हुआ। और इतना सरल स्वभाव, उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, विद्वान ने, बोले महाराज जी ये बताइए कि जीवन का लक्ष्य क्या है? उसमें बहुत समझदारी नहीं थी, व्याकरण लक कोमदी और तर्क संग्रह सिद्धांत कोमदी पढ़ते थे, पर विद्वत गोष्ठी थी तो उसमें सुनने की बड़ी जिज्ञासा थी। मैं गया था तो महाराज जी उसमें बैठे हुए, तो वो दृष्टि मेरे आंखों से अभी भी ओझल नहीं होता है। तो किसी विद्वान ने पूछा कि महाराज जी जीवन का लक्ष्य क्या है, और जो गोष्ठी हो रही थी वो सड़क के किनारे ही एक पंडाल में हो रही थी, और आप जानते हैं काशी में तब तक उधर से आवाज आ रही है, राम नाम सत्य है, ये आवाज आई, मुर्दे को लेकर के लोग अस्सी घाट पर जा रहे थे। महाराज जी से ये प्रश्न किया और महाराज जी जब उत्तर देने वाले थे तब तक ये आवाज आई। महाराज ने कहा बस मैं नहीं दे सकता, वो सामने वाले दे रहे। जीवन का क्या लक्ष्य देखो वो बता रहे हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सज्जनों बात मेरे को आज भी हृदय में ऐसी बैठ गई है। तो वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभा, ये बात मैंने आपको कैसे कही, महाराज जी का ऐसा ही जीवन था। वृंदावन में आश्रम में रहते थे, अपने कमरे में भोजन करते थे, पर कभी कभी जो अन्न क्षेत्र चलता था उसमें वृंदावन के जो भी लोग मांग जो है खाने के लिए आते थे, भिक्षा ले जाते थे, और कभी कभी लाइन में उसमें पीछे लग जाते थे। कहा महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हैं? अरे भाई देखना है कि हमारे दरिद्र नारायण के लिए भोजन अच्छा बनता है कि हमारे लिए अच्छा बनता है। वासुदेव सर्वमिति। सज्जनों कहते हैं ना कि एक कण को चखने से पता लग जाता है कि सारा ये आइटम कैसा है। महाराज जी के बारे में बहुत कहने की जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति हृदय से जरा सा भी ठीक से उनको चिंतन करेगा तो सारे जीवन का दृश्य सामने आ जाता है। तो ऐसे महापुरुष, और हमारे द्विवेदी जी अभी बता रहे थे कि उनसे पूछा कि महाराज जी आपके जीवन चरित्र के बारे में, बोले संतों से जो हमने लिया है वो बता सकते हैं। तो ये महाराज जी की मन की जो भावना थी, मुझे एक बात याद आती है, उन्होंने निश्चय कर लिया था। क्या तो किसी भक्त ने कही है, ढूंढू संतों को मैं और मुझे ढूंढे हरि, ढूंढू संतों को मैं मुझे ढूंढे हरि, मौत से मैं डरूं मौत प्रभु से डरी, दोनों डरते हैं हरदम ये संत से, बिन संतों के जीवन निशा आंधरी। कहा कि मैं मौत से डरता हूं और मौत भगवान से डरती है, पर मौत और भगवान दोनों किससे डरते हैं? संत से डरते, बिन संतों की जीवन निशा आंधरी। कहा कि अगर जीवन में संत नहीं आए तो सज्जनों समझ लेना कि जीवन अंधकार में। तो उनके जीवन में ये चरितार्थ होता है कि भाई संत ही सब कुछ है और वही परमात्मा से मिला सकते हैं। मुझे संतों को पकड़ना है, भगवान को पकड़ने की जरूरत नहीं है। और किसी कवि ने सुंदर बात की ऐसे महापुरुषों के लिए, जिंदगी की हर मोड़ पर, जिंदगी की हर मोड़ पर त्रिशूल नजर आते हैं और कृपा हो इन संतों की तो फूल नजर आते हैं। सचो जीवन मया जीवन हुआ सत्संग में, जीवन हुआ सत्संग में तो कूल नजर आते हैं और मस्तक सजा यदि भक्ति से तो सहज पार जाते हैं। सज्जनों ऐसे महापुरुषों के लिए ही कहा गया है कि ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं तो त्रिशूल को भी क्या बना देते हैं, फूल बना देते हैं। ऐसे महापुरुषों के लिए मुझे बहुत कुछ बोलना है और कितना भी बोलूं तो मैं नहीं बोल सकता हूं। सज्जनों ये आप लोगों के सहयोग से कहिए या प्रेम से कहिए। कल सुबह शायद हमारे गिरीश भाई का फोन पहुंच गया मेरे पास, कहा कि महाराज जी आपको यहां आना है आराधना महोत्सव में। मैंने कहा कि मेरा एक पैर तो इधर फंसा हुआ है, कैसे आऊं, फिर खोजूंगा निकालने की कोशिश करूंगा। तो महाराज श्री की कृपा से ही वो पैर निकल गया तो आ गया और आप लोगों के दर्शन हो गए, महापुरुषों के दर्शन हुए और ये वाणी पवित्र करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैं महाराज श्री के चरणों में बार बार कोटि नमन करते हुए, महापुरुषों को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम दशरथ, हरिओम दशरथ।
बहुत ही सुंदर भाव प्रकट किए पूर्ण चैतन्य जी महाराज श्री ने। महाराज श्री कहते थे कि पद्धतियां दो होती हैं बोलने की, एक समास पद्धति और एक व्यास पद्धति। तो सारा समुद्र एक घड़े में उठा के बिठा दे वो समास पद्धति, और एक घड़े से निकाल के पूरा समुद्र बना दे वो व्यास पद्धति। तो उसके दर्शन हम लोगों ने किए, जो भागवत करने जा रहे हैं उन्होंने 10 मिनट में अपने पूरे भाव महाराज जी के संस्मरण बहुत प्रेम से सुनाए। ग्रंथ की बात हो रही थी, हमारे स्वामी गोविंदानंद जी का नाम लिया था, ब्रह्मचारी प्रीतमानंद जी ने, तो उन्होंने यहाँ के मराठा के संत हुए हैं गोलवंडे जी, नहीं गोलवरकर, गोंदवलकर, गोंदवले संत गोंदवले, गोंदवले उनका एक 365 दिन पे उनके वचन उन्होंने देखे गोविंदानंद जी ने, और उस पर फिर महाराज श्री का एक 365 दिन का 6 साल में उन्होंने लगभग 176-177 ग्रंथ महाराज जी के पलटने के बाद एक एक पेज करके 365 पृष्ठ निकाले, तो उसका तीसरा संस्करण आ गया है आनंद रस रत्नाकर, वो अभी लोकार्पित होगा। और महाराज श्री का भागवत सर्वस्व करके एक ग्रंथ है, वो 7 दिनों में पूरी भागवत उसका एक प्रकरण बन गया था हमारे आदित्य विक्रम के पास, जीवन के समय कम थे और मां की प्रार्थना थी, सरला जी की प्रार्थना थी कि इसको भागवत सुना देनी चाहिए, तो समय कम था महाराज जी के पास भी और उनके पास भी, तो 7 घंटे में वो भागवत हुई। तो ये समाज पद्धति का एक उदाहरण, और वही भागवत महाराज श्री ने 1 साल तक करी, 7-7 घंटे प्रतिदिन वृंदावन में 364 दिन। संकल्प था हरि बाबा का कि 1 साल तक भागवत सुना दो, और एक दिन जब रह गया तो हरि बाबा कहे कि बस रोक दो अब, तो महाराज जी का एक दिन रह गया है, साल पूरा हो जाता है, तो कहे कि साधु का संकल्प पूरा हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, छोड़ दो, और महाराज जी ने भी छोड़ दिया, लोग चले गए भाई बाबा जी के तट पे। तो ये लोकार्पण के लिए भागवत सर्वस्व का अंग्रेजी में अनुवाद भी हो गया, पूर्णिमा ललित कुमार कलकत्ते की हैं, हिमलता रतन सिंह खटाऊ की, तो उन्होंने किया है उसका अंग्रेजी अनुवाद, वो भी आया है, वो प्रथम लोकार्पण है, और यहां दहिया जी हमारे कृष्ण कुमार दहिया जी ने उसको छपवा दिया था, तो वो हम महाराज श्री से प्रार्थना करते हैं कि इन ग्रंथों का लोकार्पण करें महाराज। और आनंद पत्रावली भी तृतीय संस्करण आ गया, वेदांत के महाराज जी के पत्र हैं आनंद पत्रावली में, तो उसका भी तृतीय संस्करण है, तो ये तीनों ग्रंथ आपको महाराज श्री दिखाएंगे, अभी आप लोकार्पित करेंगे। रामायण अमृत भी पांचवां संस्करण है ये रामायण अमृत का, 40,000 श्लोक हैं रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, तो 40,000 श्लोकों को 15 दिन में महाराज जी ने प्रवचन रूप में रखा है, और ज्ञान रस रत्नाकर। तो ये आप महाराज श्री अपना आशीर्वाद पूरे निसंकोच प्रदान करें हम लोगों को, और आज से कुल 40% की छूट आज से 7 दिन तक, तो 20% प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन ट्रस्ट और 20% सत्पाय साहित्य प्रकाशन की तरफ से, इस ढंग से 40% की छूट आज के लिए, और फिर आगे के लिए भी 20% की रहेगी छूट। महाराज श्री से फिर प्रार्थना करता हूं कि अपना अध्यक्ष उद्बोधन देके हम लोगों को।
ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रेमपुरी जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मजिन महाराज श्री, जिनके निमित्त से आज ये आराधन महोत्सव मनाया जा रहा है। आराधना ये बीच वाली कड़ी है, आराधक और आराधनीय वस्तु को जोड़ने की, जिसको हम उपासना भी कह सकते हैं, भक्ति भी कह सकते हैं, प्रेम का प्रवाह भी कह सकते हैं। आराधना से ही आराधनीय वस्तु को आराधक जुट सकता है। आराधनीय है अखंड आनंद। आराधनीय कौन है? अखंडानंद, अर्थात अखंड आनंद, जिस आनंद में खंडना न हो। जो आनंद टूट फूट न जाए, जो आनंद कट न जाए, जिस आनंद के अंदर किसी प्रकार की खंडना हो, खंडना न हो, अर्थात अव्याहत प्रवाह चलता रहे, अखंडनीय, वही हमारे जीवन का आराधनीय है। इस आराधनीय को हम कैसा प्राप्त हो सकते हैं? हमारे महापुरुषों ने महाराज श्री का जो जीवन चरित्र का जो संस्मरण कराया, इस संस्मरण के द्वारा भी हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, आराधना तो वही होती है कि जो आराधनीय है उसका आचरण हमारे जीवन में आ जाए, उसी का नाम आराधना है। केवल हम उसकी प्रशंसा करें या वर्णन करें, उतने से ही उनका जीवन हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। स्मरण हो सकता है परंतु आचरण में नहीं आ सकता है। इसके लिए मैं चार सूत्र बता देता हूं, क्योंकि टाइम मेरे को 3 मिनट का बचा था, 1 मिनट ज्यादा हो चुका है। और ये हमारे इसकी ये है कि जिससे नहीं बुलवाना होता है ना, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। कोई बात नहीं, हम तो बहुत बोलते रहते हैं। आज 35 साल से मैं यहां बोल रहा हूं। हमारे सुनते सुनते बोलते बोलते हम बुढ़े हो गए, और हमारे सुनते सुनते श्रोता भी लोग बुढ़े हो गए, कुछ तो हो अपने धाम पधारे भी। अब ज्यादा बोलने का समय हमारा रहा भी नहीं है, क्योंकि हम भी मूल संन्यास आश्रम की स्थिति में आ रहे हैं। कब होता है संन्यास आश्रम का प्रारंभ? कब होता है? हमारे शास्त्र के दृष्टि से 75 से आगे संन्यास आश्रम बताया जाता है। कहने का तात्पर्य, आपको चार सूत्र अपने जीवन में लाने के लिए बताता हूं। ये सूत्र यदि आपके जीवन में आ गए तो अखंडानंद की निश्चित प्राप्ति है। जो उस स्वरूप को, उस आनंद को, अखंड आनंद को जिसने प्राप्त किया है, वो इन्हीं सूत्र के, ये सूत्र अपने जीवन में लाए तब वो उस स्थिति को प्राप्त हो पाए हैं, ये ध्यान रखो। शरीर हमारा अखंडानंद नहीं होता है, वस्त्र अखंडानंद नहीं होता है, इंद्रिया अखंडानंद नहीं हो सकती है, हमारा मन बुद्धि भी अखंडानंद नहीं हो सकता है। अखंडानंद है आत्मा, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। और कैसा है? तो अखंड है, उसके आनंद में कभी भी त्रुटि नहीं होती है, अभाव नहीं होता है, व्यय नहीं होता है। जो आत्मा में स्थित हो जाता है वही अखंडानंद बन जाता है, ध्यान रखो। इसलिए आत्मा में स्थित होने के उपाय मैं आपको चार सूत्र भी बता देता हूं।
सबसे पहले है कि अपने कर्म को शुद्ध करो, कर्म शुद्धि। दूसरी है भाव शुद्धि, तीसरी है प्रेम शुद्धि और चौथी है ज्ञान शुद्धि। ये चार वस्तु को यदि हम शुद्ध करते हैं तो हमें निश्चित जो आराधनीय वस्तु है उस आराधनीय की प्राप्ति होगी और हम भी वही हो सकते हैं। कर्म शुद्धि का अर्थ हम जो भी कर्म करते हैं उस वो कर्म हमारा काम क्रोध आदि ये विकार हमारे संस्कार और गुण हमारे कर्म को दूषित करते हैं। बहुत विचार बहुत है परंतु सूत्र के रूप में ही बता देता हूं। भगवान ने एक सूत्र बता दिया कि मामनुस्मर युद्ध जो युद्ध घोर कर्म है परंतु उस घोर कर्म को भी हम धर्म बन सकते हैं। धर्म हमारे कर्म को शुद्ध करता है और शुद्ध कर्म का नाम ही धर्म होता है। ध्यान रखो, दान देना या और कुछ वस्तुओं का ये करना उसको धर्म नहीं कहा जाता, सत्कर्म कहा जा सकता है। हमारा कर्म धर्म बन जाए और धर्म कर्म वही धर्म बन सकता है जो कर्म परमात्मा के लिए किया जाता है, अपने लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, देह के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, कर्म यही करना है। परंतु हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे भाव में परमात्मा का स्मरण हो, प्रत्येक कर्म परमात्मा के लिए बन जाए तो हमारा कर्म शुद्ध होगा। कर्म शुद्ध का अर्थ होता है कर्म में कर्तापन न आना। क्या? जिस कर्म में कर्तृत्वपना नहीं आता है उस कर्म में भोक्तृत्वपना भी नहीं आएगा, और कर्तृत्वपन से और भोक्तृत्वपन से रहित जो कर्म है वो शुद्ध कर्म है। ये ध्यान रखो, संक्षेप में बताता हूं। दूसरा है भाव शुद्धि। हमारे भाव अशुद्ध है, दो वस्तु से भाव हमारे अशुद्ध होते हैं, एक तो अविद्या के गुणों से और हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से। भाव जो उठते हैं वो अविद्या के भूतल पर उठते हैं परंतु गुणों के और संस्कारों के संबंध से उठते हैं। तो इन भावों को शुद्ध करना है तो हमारे भाव कैसे शुद्ध हो? सात्विक संस्कार हमारे अंदर जब निर्माण होते हैं और सत्वगुण और सात्विक संस्कार ये दोनों मिलकर के जो होते हैं वो सत्कर्म व सद्भाव कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? सद्भाव। सद्भाव का अर्थ शुद्ध भाव नहीं है, ध्यान रखो। क्या? सद्भाव का अर्थ शुद्ध भाव नहीं हो सकता है। सद्भाव से वो सज्जन बन सकता है परंतु महात्मा नहीं। सज्जन और महात्मा दोनों अलग चीज है। सज्जन अलग होता है, जो सद्भाव से युक्त होता है वो सज्जन कहलाता है। परंतु महात्मा महानश्चासो आत्मा, जिसकी आत्ममय दृष्टि हो गई है, सर्वत्र उस आत्मा को ही देख रहा है, उसको महात्मा कहा जाता है। तो हमारे भाव में परिच्छिन्नता नहीं हो। क्या? भाव की शुद्धि, जिस भाव में अहम होता है और जिस भाव में मम होता है, ये ममता से अर्थात मेरापन से और मैपन से रहित तो जो भाव होगा वो भाव शुद्ध होता है। क्या? जिस भाव में मैपना नहीं हो और मेरापन नहीं हो, इन दोनों से रहित तो जो भाव होगा वो भाव शुद्ध होता है। इसलिए मैंने सद्भाव में और शुद्ध भाव में अंतर बता दिया। सद्भाव में भी मैपना रहता है, भला मेरापन नहीं हो परंतु मैपना होता है, इसलिए मैंने उसको भी सद्भाव कहा गया है। तीसरी बात है प्रेम शुद्धि। हम जो ये कह रहे हैं कर रहे हैं प्रेम यही है। प्रेम तो आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम हरि रूप जान, हरि प्रेम रूप जान। परमात्मा का रूप प्रेम है और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है। वही आत्मा से हमारे बुद्धि में अंतकरण में आ जाता है और अंतकरण के दोष से हमारा प्रेम अशुद्ध हो जाता है। प्रेम की अशुद्धि क्या है? प्रेम को हो अशुद्ध, एक तो हो काम करता है काम। ये काम तीन प्रकार का होता है, एक इच्छा रूप काम, एक संस्कार रूप काम और एक बीज रूप काम। बीज रूप काम जो है वो आपको ज्ञात नहीं होता है, बहुत सूक्ष्म है। काम का स्वरूप जो है बहुत सूक्ष्म है, इसलिए तो प्रेम में और काम में कोई अंतर नहीं दिखता है। महाराज जी ने एक पुस्तक में लिखा है प्रेम का और काम का एक बाल बराबर का अंतर है। कितना? एक बाल का। परंतु मोटे तौर से मैं बता रहा हूं, जहां चाहना रहेगी, जहां लेना रहेगा, लेनापन जहां से आएगा वहां समझ लेना काम है, और जहां समर्पण रहेगा, देना ही देना रहेगा, लेना कुछ नहीं रहेगा, उसका नाम है प्रेम। उस प्रेम को ही भक्ति कहा गया है शास्त्रों ने। सानकामाय माना निरोध रूपत्वात्। निरोध किसका? निरोध कामनाओं का निरोध। जिस प्रेम में किसी प्रकार का काम नहीं हो, स्थूल काम भी नहीं हो, अर्थात इच्छाओं की निवृत्ति, संस्कार रूप काम न हो, आशा तृष्णा मनसा आदि आदि जो है वासना, इनकी समाप्ति, और बीज रूप काम जो है वो अविद्यामय है। इस हमारे प्रेम को ये जो अविद्या है, ये अविद्या काला बना देती है, प्रेम को काम बना देती है। हम अज्ञानता से इस प्रेम को हम काम बना रहे हैं। इसकी समाप्ति जहां हो जाती है वहां प्रेम की शुद्धि होती है, और जहां प्रेम की शुद्धि होती है वहां साध्य की सिद्धि होती है। ये ध्यान रखो, ये प्रेम ही आपको उस वस्तु में ले जाकर के तद्रूप बनाने वाला है। और चौथी बता दिए हैं ज्ञान शुद्धि। ज्ञान आपको अपना ही है अपना। अब इस ज्ञान में जो मिलावट हो गई है, मैं जीव हूं, मैं देह हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं आदि आदि अनेक प्रकार का, ये जो हमारे ज्ञान में ज्ञान नहीं है ये बात नहीं है। ज्ञान सभी को है, अपने अभाव का ज्ञान किसी को नहीं होता है। हमेशा अपना भाव का ही, अपने अस्तित्व का ही, मैं नहीं हूं ऐसा कभी आपको अनुभव होता है? कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में जो दोष आ गए और जिन दोषों से ये हमारा ज्ञान अशुद्ध हो गया है, मलिन हो गया है, विकृत हो गया है, जड़ हो गया है, इसको अपने पुरुषार्थ से आपको दूर करना पड़ेगा। और शास्त्रों ने उसके उपाय बता दिया, सद्गुरु की शरणागति, सत्शास्त्र का श्रवण, मनन निधिध्यासन, ये ज्ञान के शुद्धि के साधन है। मल विक्षेप आवरण, ये जो तीन दोष हमारे इस ज्ञान के अंदर मिली हुई है, इनको दूर करना, शास्त्र का श्रवण करने, उसका मनन करना और उसका निधिध्यासन करना, इस प्रकार से ये चार अशुद्धि जो जीव करता है वो महात्मा होता है, और जो महात्मा होता है उसको ही अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये अखंड आनंद हमारा स्वरूप ही है, उस स्वरूप से कभी भी तुम अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए उस स्वरूप पर दृष्टि रख करके हमें ये साधन पुरुषार्थ रूप करना चाहिए। कर्म रूप, कर्म और पुरुषार्थ में अंतर होता है, ध्यान रखो, पुरुषार्थ अंदर होता है, कर्म बाहर होता है। इसलिए कर्म मत करो, पुरुषार्थ करो, अंदर के दोषों को दूर करने का जो आप प्रयास करोगे उसी का नाम पुरुषार्थ होगा। मैं यही अपने आशीर्वाद देता हूं, महाराज जी का पूज्य महाराज जी के स्मरण करता हुआ महाराज जी के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हुआ, और आप लोगों को यही आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में ये चार शुद्धि लाओ, कर्म शुद्धि, भाव शुद्धि, प्रेम शुद्धि और ज्ञान शुद्धि, ये यदि आपके जीवन में आ गया तो आप भी अखंडानंद बन सकते हैं। यही मैं आशीर्वाद देता हूं, अब वाणी को विश्राम कर देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
बहुत ही सुंदर हमारे महारक की पूरी प्रक्रिया ही महाराज श्री ने आप लोगों के सम्मुख रख दी, बड़ी कृपा आपकी। हम सबकी प्रार्थना धर्म प्रार्थना काम रुचि गति मच हो निर्वाण जन्म जमन प्रति राम पद यह वरदान आन। हम लोगों की प्रीति आप लोगों के चरणों में बनी रहे। गिरीश भाई से प्रार्थना है कि अपना धन्यवाद ज्ञापन और आगे का जो विधि है वो पूरी कर दें। हम सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे।
हरिओम। पूज्य संतों के चरणों में वंदन करते हुए समय की मर्यादा को देखते हुए सबका हम आशीर्वाद लेते हैं, संतों का जो भी यहां पधारे हुए हैं। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।